दीवा आर्यांश के घर पर रहने के लिए आ चुकी थी। वहां पहले से ही एक लड़की मौजूद थी जिसके सामने आर्यांश ने दीवा को अपनी नौकरानी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। उसके जाने के बाद आर्यांश दीवा के पास आया। आर्यांश और दीवा इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। आर्यांश ने काफी इंटेंसिटी से दीवा को खुद का नाम बुलाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसकी बात नहीं मानने पर आर्यांश गुस्सा हो गया और उसे सजा देने की बात कहने लगा। दीवा कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले आर्यांश के होंठ दीवा के होंठों से जुड़ गए थे और वो उसे काफी इंटेंसली किस कर रहा था। आर्यांश अपनी जीभ से उसकी टंग के साथ खेल रहा था। दीवा आर्यांश से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो मानो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। दीवा की आंखों में बार बार वही सीन आ रहा था जब आर्यांश कियाना के थोड़ी देर पहले बेहद करीब था। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये मुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाला है, दीवा ने मन ही मन कहा। हालांकि दीवा जो करने जा रही थी उसमें भी काफी रिस्क था, लेकिन उसे आर्यांश को खुद से दूर करने का यही तरीका नजर आया। अचानक किस करते हुए दीवा ने आर्यांश के होंठों पर काट लिया था। उसके मुंह में आर्यांश का खून तक आ गया था, लेकिन फिर भी आर्यांश ने उसे नहीं छोड़ा। दीवा ने आर्यांश का मुंह पकड़कर खुद से दूर किया और चिल्लाकर बोली, मिस्टर कपूर क्या आप पागल हो गए हैं? हाँ, हो गया हूं मैं पागल, आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। उसके होंठों पर हल्का सा खून अभी भी लगा था, लेकिन उसने उसे साफ नहीं किया। इस वक्त आर्यांश की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। दीवा को आर्यांश समझ नहीं आता था। कभी वो उसकी इंसल्ट करने लगता था तो कभी उसके करीब आने की जिद करता था। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। दीवा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? आखिर मैं तुम्हारी लगती क्या हूं? तुमने मुझे यहां इसलिए बुलाया है ताकि हर मोमेंट पर मेरी इंसल्ट कर सको? अच्छा, तो तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं, आर्यांश ने काफी प्लेफुल वे में कहा। मुझे नहीं पड़ता, दीवा उसी जिद के साथ बोली। अगर नहीं पड़ता तो कंप्लेन क्यों कर रही हो? साफ साफ बोल क्यों नहीं देती? कियाना को मेरे करीब देखकर तुम्हें जलन हो रही थी, आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए पूछा। मैं किसी से नहीं जलती हूं, मैं बस कंफ्यूज हूं, आखिर तुम चाहते क्या हो? बस इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, दीवा ने जवाब दिया। अंदर ही अंदर दीवा को सच में जलन हो रही थी, उसे उसका अंदाजा पहले से था। आर्यांश के आसपास काफी लड़कियां घूमती हैं जिसे वो जब चाहे तब हासिल कर सकता है। सच जानते हुए भी उसे आर्यांश के पास कोई और लड़की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आर्यांश ने कुछ पल सोचा और फिर दीवा की आंखों में देखते हुए बोला, सो तुम जानना चाहती हो मैं क्या चाहता हूं? मैं तुम्हें चाहता हूं मिस गोयंका, मुझसे तुम्हारे मुंह से वो तीन मैजिकल वर्ड सुनने हैं। दीवा के मन में अभी भी यही चल रहा था कि आर्यांश उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। ऊपर से वो ये चाहता है कि वो उसे आई लव यू कहे। दीवा ने आर्यांश की तरफ देखा जो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रहा था। दीवा उससे बचने के लिए पीछे खिसक रही थी और आखिर में वो दीवार से जा लगी। आर्यांश ने अपना एक हाथ दीवार पर टिकाया और सिर हिलाकर बोला, चलो अब जल्दी से वो तीन मैजिकल वर्ड्स बोल दो, कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। इन योर ड्रीम्स, दीवा ने सख्ती से कहा। उसके इनकार करने के बाद भी आर्यांश के चेहरे पर गुस्से के बजाय तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, तुम जब जिद करती हो तो और भी हॉट लगती हो, लेकिन मेरे सामने जिद करने का क्या नतीजा हो सकता है तुम जानती हो ना? दीवा की नजरें झुक गई थीं। वो कुछ कहती उससे पहले आर्यांश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। आर्यांश के कदम सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहे थे। दीवा ने सोचा था कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की होने की वजह से वो उसके करीब नहीं आएगा, लेकिन वो पूरी तरह गलत थी। दीवा ने हड़बड़ाकर पूछा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? वही जिसके लिए मैंने तुम्हें यहां रहने के लिए बुलाया है। अगर तुम जिद नहीं करती तो मैं प्यार से तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन तुम बार बार मेरी ईगो को चैलेंज करती हो, आर्यांश ने जवाब दिया। पिछली बार दीवा जिस कमरे में गलती से पहुंची थी वो गेस्ट रूम था, लेकिन इस बार वो सेकंड फ्लोर पर आर्यांश के बेडरूम में आ चुकी थी। वो कमरा काफी बड़ा था, उसे खूबसूरती से डिजाइन किया गया था। आर्यांश ने दीवा को बेड पर लिटाया और अगले ही पल वो उसके ऊपर था। आर्यांश का चेहरा दीवा के गालों पर छुपा था और वो उसे किस कर रहा था। वहीं दीवा की नजरें सामने की दीवार पर थीं, जहां एक तरफ एक वायलिन टांगा हुआ था। उसे देखते ही दीवा ने अचानक पूछा, क्या तुम वायलिन बजाते हो? आर्यांश ने तुरंत उसे छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए हां में पलकें झपक दी। दीवा के चेहरे पर चमक आ गई थी। ऐसा इस वजह से था क्योंकि उसे म्यूजिक से प्यार था। उसने एक्साइटेड होकर आर्यांश से पूछा, क्या तुम मेरे लिए वायलिन बजाओगे? कभी भी नहीं, आर्यांश ने सख्ती से कहा। अचानक आर्यांश दीवा के ऊपर से खड़ा हो गया था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि दीवा के सवाल ने उसके मूड को पूरी तरह बिगाड़ दिया था। आर्यांश बाहर की तरफ जाते हुए तेज आवाज में बोला, आज की रात तुम इस कमरे में अकेले आराम से सो सकती हो मिस कोयंका। इतना कहने के बाद आर्यांश कमरे से बाहर चला गया था। दीवा उलझन भरी निगाहों से उसे देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, ये जैसा दिखने की कोशिश करता है वैसा भी नहीं है। ऐसा लगता है इसके दिल में कुछ तो राज छुपा हुआ है जिसे इसने अपनी अकड़ के पीछे छुपा रखा है। जो भी हो, आज रात के लिए बच गई वही काफी है। दीवा को पहले तो आर्यांश की फिक्र थी, लेकिन बाद में जब उसे एहसास हुआ कि आज रात आर्यांश उसके साथ नहीं सोने वाला है, तो उसकी ये फिक्र खुशी में बदल गई। वो मजे से कमरे में सो रही थी और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई थी। अगली सुबह जब दीवा की आंख खुली तो घर में बिल्कुल शांति थी। वो तैयार होकर नीचे पहुंची तो घर खाली था। दीवा के उठने से पहले ही आर्यांश चला गया था। दोपहर के करीब उसे आर्यांश का मैसेज मिला कि आज शाम वो जल्दी घर आ जाए। दीवा ने उसे जवाब में हाँ लिखकर भेज दिया था और फिर हॉस्पिटल चली गई थी। शाम को जब उसका काम लगभग खत्म होने ही वाला था, तब डॉक्टर निश्चय व्यास उसके पास आया। डॉक्टर गोयंका, आज मेरा बर्थडे है और मैं पार्टी देने वाला हूँ, आप आने वाली है ना? निश्चय ने एक्साइटेड होकर पूछा। दीवा थोड़ा हड़बड़ा गई थी कि वो क्या जवाब दे। थोड़ी देर पहले ही उसने आर्यांश को घर जल्दी आने के लिए हामी भरी थी। दीवा हाँ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर उसने आर्यांश की बात नहीं मानी तो वो फिर से उस पर गुस्सा हो जाता और वही उल्टी सीधी हरकतें करता। दीवा ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं जरूर आती डॉक्टर व्यास, लेकिन मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है। दीवा के मना करने पर निश्चय का चेहरा उतर गया था। उसने फिर दीवा से कहा, मुझे पता है आप इसलिए नहीं आ रही है ना, क्योंकि पार्टी में डॉक्टर मल्होत्रा भी होंगे। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मल्होत्रा इस पार्टी में नहीं आने वाले हैं और बाकी सारा स्टाफ पार्टी में मौजूद होगा। नहीं डॉक्टर निश्चय, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे सच में काम है, दीवा ने जवाब दिया। हालांकि अगर आर्यांश ने जल्दी नहीं आने को कहा होता तो वो ये पार्टी जरूर अटेंड करती। वैसे भी डॉक्टर मल्होत्रा किसी को पसंद नहीं था और उसके ना होने पर पार्टी काफी शानदार होने वाली थी। अच्छा, फिर हम ऐसा करते हैं कि आप थोड़ी देर पार्टी अटेंड करने के बाद घर चली जाइएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, निश्चय ने काफी प्लीडिंग वॉइस में कहा। वो सच में चाहता था कि दीवा पार्टी में आए।
निश्चय और दीवा बात ही कर रहे थे कि तभी सिस्टर नव्या वहां पर आई। उसने उनकी बातें सुन ली थी। नव्या ने दीवा के पास आकर बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, अगर तुम इस पार्टी में नहीं आओगी तो मैं भी नहीं आने वाली। मजबूरी में दीवा को पार्टी का इनविटेशन स्वीकार करना पड़ा। उसने आर्यांश को थोड़ा लेट आने को कहा और फिर पार्टी में चली गई। ये होटल में रखी गई एक शानदार डिनर पार्टी थी, जहां पर डिनर के बाद उन्होंने कुछ गेम्स खेले। गेम में हारने वाले लोगों को ड्रिंक करनी थी। ऐसे में दीवा काफी ड्रिंक कर चुकी थी। इस बीच आर्यांश उसे बार बार मैसेज कर रहा था, लेकिन दीवा इतने नशे में थी कि उसे कुछ होश नहीं था। जब पार्टी खत्म हुई तब डॉक्टर निश्चय ने उससे कहा, डॉक्टर गोयंका, आपने काफी ड्रिंक कर ली है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन मैं तो नशे में नहीं हूँ, दीवा ने हंसकर जवाब दिया। ऐसी हालत में निश्चय दीवा को अकेला छोड़ना जरूरी नहीं समझा। दीवा के माँ बाप के घर के एड्रेस का उसे पता था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी में दीवा को लिफ्ट दी और उसे उसके घर के आगे छोड़ दिया था। वहीं दीवा भी नशे में ये भूल चुकी थी कि अब वो आर्यांश के घर पर रहती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर निश्चय, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं अपने घर पहुंच सकती थी, दीवा ने निश्चय से कहा और फिर अपने घर के अंदर जाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ आर्यांश अब तक दीवा के आने का इंतजार कर रहा था। उसने दीवा को शाम के 5 बजे के करीब घर पहुंचने को कहा था, जबकि इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, आर्यांश का गुस्सा भी बढ़ रहा था। अब क्या होगा दीवा के साथ? वैसे कल किसी ने दिन में चैप्टर देने का कहा था, तो अब से इस कहानी का एक भाग दिन में और एक रात में आएगा। बस आप अच्छा रिस्पॉन्स देते रहें, मतलब कमेंट करते रहा करें।